अभिवादन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक उद्बोधन से जुड़ा है, बहुदेववाद को समझें, भ्रम जंजाल में ना उलझें। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो हिंदू धर्म में जो अनेक देवी देवताएं हैं उन पर एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि पूज्य गुरुदेव की इस शिक्षा का जो सार है उसको समझें। मतलब क्या हिंदू धर्म सच में बहुदेववादी है या फिर इन अनेक रूपों के पीछे कोई और गहरा मतलब छुपा है, देखते हैं।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव का जो मुख्य तर्क है ना, वो बहुत साफ है। वेदों का वो महावाक्य है ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। मतलब सत्य एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं या पुकारते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर तो मूल रूप से एक ही है। ये जो इतने सारे देवी देवता दिखते हैं वो दरअसल उस एक ही परम शक्ति के अलग अलग गुण या कह लीजिए शक्तियां या कर्मों के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। जैसे एक ही इंसान की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, है ना, या अलग एंगल से फोटो खींचो तो अलग दिखता है। उन्होंने स्रोत में अपना ही उदाहरण दिया है कि कोई उन्हें पंडित जी कहता है, कोई गुरु जी,
हाँ हाँ, संपादक जी भी,
हाँ,
पर व्यक्ति तो एक ही है।
बिल्कुल, व्यक्ति एक ही। तो देवताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही है।
और ये बात तो बड़ी रोचक है कि वो इन प्रतीकों को सिर्फ बाहर की शक्ति नहीं बल्कि हमारे अंदर की अवस्थाओं से जोड़ रही है, जैसे उन्होंने भवानी और शंकर का उदाहरण दिया।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। वो रामायण के एक श्लोक का जिक्र करती हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
अच्छा।
और बताती हैं कि भवानी मतलब श्रद्धा और शंकर मतलब विश्वास।
जी।
तो ये दिखाता है कि ये देवता सिर्फ बाहर पूजने वाली मूर्तियां नहीं है, ये हमारे भीतर के ही गुण है, सिद्धांत है। श्रोत में उनके कैलाश यात्रा का अनुभव भी इसी तरफ इशारा करता है कि सच्ची अनुभूति बाहर खोजने से ज्यादा अंदर की श्रद्धा और विश्वास से मिलती है।
लेकिन गुरुदेव ये भी तो कह रहे हैं कि समय के साथ ये जो गहरा मतलब था, ये प्रतीकात्मक अर्थ, वो कहीं खो सा गया और लोग बस ऊपरी भ्रम और अंधविश्वास में फंस गए। उन्होंने समाज की जो आलोचना की है वो थोड़ी तीखी लगती है कि लोग हर छोटी बड़ी चीज के लिए बाहरी देवताओं पर निर्भर हो गए हैं। इसे वो देवताओं की गुलामी कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है यहाँ?
हाँ, गुलामी। उनका इशारा उस तरफ है जहाँ इंसान अपना विवेक, अपनी कर्म की शक्ति, उसको भूल जाता है और पूरी तरह बाहरी चीजों पर टिक जाता है। जैसे यात्रा करनी है तो मुहूर्त देखो, शादी में बृहस्पति का डर, व्यापार में शनि का खौफ, यहाँ तक कि बच्चों के मुंडन जैसे काम में भी कुल देवी की मनौती।
हाँ, ये तो होता है अक्सर।
तो गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह की जो निर्भरता है ना, वो व्यक्ति की अपनी सोच, उसके आत्मविश्वास, उसको खत्म कर देती है। वो अपने कर्म पर, पुरुषार्थ पर भरोसा करने की बजाय डर और मान्यताओं का गुलाम बन जाता है।
तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे किसी के सहारे तो बहुत हों पर असल में कोई एक भी मजबूत सहारा ना हो।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक लोक कहावत भी इस्तेमाल करते हैं, सात मामाओं का भांजा भूखा ही मरता है।
अच्छा, हाँ सुनाइए। तो
उनका कहना है कि जब आपकी निष्ठा इतने सारे देवी देवताओं में बट जाती है तो किसी एक के प्रति भी वो सच्ची गहरी श्रद्धा नहीं बन पाती। श्रोत में उन्होंने एक स्त्री का भी उदाहरण दिया है जिसके कई संरक्षक हों पर जब मुसीबत आए तो कोई जिम्मेदारी ना ले।
बात तो सोचने वाली है।
तो ठीक वैसे ही अनेक देवताओं में बटी हुई श्रद्धा शायद मुश्किल वक्त में कोई असली सहारा न दे पाए।
तो फिर इन देवी देवताओं की स्थापना का मतलब, उनका असली मकसद क्या था अगर उनपे ऐसे निर्भर नहीं होना है तो? गुरुदेव के हिसाब से इनकी सही जगह क्या है?
गुरुदेव बहुत स्पष्ट करते हैं कि देवताओं की स्थापना का मूल उद्देश्य था जीवन को बेहतर बनाने के लिए आदर्श देना, आइडियल्स। वे जैसे लाइट हाउस होते ना समुद्र में रास्ता दिखाने वाले, वैसे ही।
अच्छा, प्रकाश स्तंभ की तरह।
हाँ, जैसे शिव का स्वरूप ही ले लीजिए, उनके सिर से गंगा निकल रही है, वो ज्ञान की धारा का प्रतीक है। माथे पर चंद्रमा है, वो मानसिक संतुलन, शांति का प्रतीक है।
नीलकंठ।
हाँ, नीलकंठ होना मतलब समाज का जहर, बुराइयां, आलोचनाएं, उनको पचा जाने की शक्ति। और उनका वो शमशानवासी रूप, भस्म लगाना, ये सब मृत्यु की सच्चाई के प्रति जागरूक रहने का प्रतीक है।
तो मतलब पूजा सिर्फ जल चढ़ाना नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पूजा का अर्थ है इन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना।
और चंडी या दुर्गा के बारे में भी उनकी ऐसी ही व्याख्या है ना, उन्हें वो एक तरह की सामूहिक शक्ति बता रहे थे।
हाँ बिल्कुल, दुर्गा या चंडी, जिनकी कहानियों में आता है कि वो सब देवताओं की मिलीजुली शक्ति से बनी, वो असल में संघ शक्ति का प्रतीक है, यानी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की ताकत,
संगठित समाज की शक्ति।
जी, गुरुदेव कहती हैं कि समाज में जो राक्षसी वृत्तियां हैं, जैसे अभाव, कमजोरी, अज्ञान, जिन्हें कहानियों में मधु कैटब, शुंभ निशुंभ या महिषासुर जैसे राक्षसों के रूप में दिखाया गया है,
हाँ,
उन पर विजय सिर्फ अकेले अकेले नहीं पाई जा सकती, उसके लिए संगठित सामूहिक शक्ति चाहिए। तो दुर्गा पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि ये समाज को एक होने और मिलकर बुराइयों से लड़ने का बुलावा है। सीता जी के प्रकट होने का जो अलंकारिक वर्णन है, उससे भी शायद यही संकेत है कि श्रेष्ठता सामूहिक कोशिशों से ही आती है।
तो मतलब सारी बात घूम फिर कर आ जाती है हमारे अपने अंदर के विकास पर, बाहरी पूजा पाठ से हटकर।
निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा आग्रह यही है कि असली पूजा बाहरी कर्मकांडों से बहुत आगे की चीज है। वो है उन प्रतीकों के पीछे जो दिव्य गुण छिपे हैं, उनको अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में उतारना।
मतलब कर्मकांड, पाठ, हवन, ये सब अधूरे हैं अगर।
हाँ, अगर उनके पीछे का जो संदेश है उसे जीवन में न उतारा जाए। वो कहती हैं कि सबसे बड़ा देवता तो आत्मदेव है, जो हमारे अपने अंदर बैठा है।
आत्मदेव?
हाँ, उस सोई हुई अंदरूनी शक्ति को जगाना, अपने अंदर देवत्व, मतलब अच्छाई, साहस, ज्ञान, प्रेम, उसको जगाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पूज्य गुरुदेव हमें ये जो बहुदेववाद का एक सतही भ्रम है उससे निकालकर एकेश्वरवाद की गहराई समझा रहे हैं और देवी देवताओं के प्रतीकात्मक अर्थ पर जोर दे रहे हैं। उनका फोकस बाहरी कर्मकांडों पर उतना नहीं जितना कि आंतरिक बदलाव, आत्म सुधार और दिव्य गुणों को अपने जीवन में लाने पर है, ताकि मनुष्य श्रेष्ठ बने, महान बने, समाज के लिए उपयोगी बने।
और यहीं पर हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना चाहिए।
क्या सवाल?
यही कि अगर ये बाहरी देवी देवता सच में हमारे अंदर के आदर्शों और शक्तियों के ही प्रतीक हैं, तो आज के समय में हमें हमारे समाज को किस आंतरिक देवता या दिव्य गुण को जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या वो शिव का संतुलन और वैराग्य है, या चंडी की वो संगठित शक्ति, या फिर विष्णु की कर्मठता और व्यवस्था बनाने की ताकत, या कुछ और? किसे जगाना सबसे जरूरी है आज?
ये वाकई एक विचार करने योग्य प्रश्न है। इसी विचार के साथ पूज्य गुरुदेव के इस उद्बोधन पर हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।